الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا اكسب العلم. तो इस क्लास में यानी बुध के रोज जो हमारा दीन एसेंशियल्स फॉर वुमेन में पहला घंटा होता है, पहला पीरियड होता है, तो उसके अंदर हम तसहील बहेश्ती जेवर किताब, जो कि असल में हजरत मौलाना हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ शुदा किताब है, और उसको तसहील फॉर्म में जामतुर रशीद के असातिज़ा कराम ने कुछ सालों पहले मुरतब किया। तो है तो ये असल में हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ही की किताब। तो इसमें हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बाब मुस्तकिल, एक बाब यानी एक चैप्टर जो है वो बांधा किताब सुलूक वल एहसान का, यानी वो किताब या वो मकतूब, वो लिखाई जो कि असलूक और एहसान के बारे में है। सलूक क्या होता है? सलूक जो है वो रास्ते को कहते हैं जो कि बंदे को परवरदिगार के साथ मिला देता है, यानी जिस रास्ते के ऊपर जब बंदा चलता है तो वो अपने परवरदिगार को राजी करने के काबिल हो जाता है। तो रास्ते पे चलने का मतलब क्या है यहाँ पर? जाहिर है कोई, ये कोई फिजिकल रास्ता नहीं है, ये कोई सड़क नहीं है, ये कोई शाहराह नहीं है, ये कोई हाईवे नहीं है, बल्कि ये वो आमाल हैं, ये वो तरीका है, ये वो नियतें हैं, ये वो सोचें हैं, ठीक है, कि जिनको जब बंदा इख्तियार करता है तो वो अपने रब को राजी कर पाता है। ये एक रास्ता है। इसी रास्ते को कुरान मजीद ने बिल्कुल इब्तिदा में सूरह फातिहा के अंदर सिरातुल मुस्तकीम फरमाया, इस्तेकामत वाला रास्ता, सीधा रास्ता, ठीक है। और इसी की ऊपर चलने के लिए हम सब के सब जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो हम उस पर चलने की हिदायत अल्लाह रब्बुल इज्जत से तलब करते हैं। इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, तो सिरात अल मुस्तकीम ही वो सुलूक का रास्ता है, ठीक है। तो ये वो किताब है जिसके अंदर उस सुलूक के रास्ते की तफसीलात बताई गई हैं। और एहसान, वल एहसान, एहसान क्या है? एहसान ये हमें हदीस जिब्राइल से मिलता है, यानी वो मशहूर हदीस के जिसमें नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे सहाबा किराम के साथ, कि एक शख्स आए जो कि बज़ाहिर लगता था कि यानी जो मदीना मुनव्वरा के बासियों में से नहीं थे, बल्कि एक बिल्कुल ही एक अजनबी शख्सियत थे, तो गोया कि वो मदीना मुनव्वरा से बाहर से ही आए होंगे, लेकिन वो ऐसे नहीं थे कि जिनके ऊपर सफर के आसार नजर आते हों, क्योंकि उस जमाने में सहरा का सफर करके लोग यानी जानवरों के ऊपर बैठ करके आते थे, तो उनके ऊपर जो है ना वो बहुत ज्यादा यानी गर्दो गुबार, पसीना और इस किस्म के आसार होते थे। तो पता चलता था कि हाँ भाई ये सफर से आए हैं। अभी आज भी अगर कोई इस किस्म का सफर करे तो देख करके पता चल जाता है, लेकिन उनके ऊपर ऐसे आसार नमूदार नहीं हो रहे थे। लेकिन वो मदीना मुनव्वरा के रहने वालों में से नहीं थे, सब एक दूसरे को जानते थे, बहुत बड़ा कोई शहर नहीं होता था। अब ये आकर के जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के पास एक खास तरीके से बैठ गए, हत्ता कि आप उनके जो 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 पैर के जो घुटने थे वो नबी अलैहिस्सलाम से उन्होंने लगा दिए, ठीक है, इतना करीब आकर के बैठ गए। और फिर उन्होंने सवाल करने शुरू किया, नबी अलैहिस्सलाम भी सवालों को सुनते गए और बड़े इत्मीनान के साथ उन सवालों के जवाब देते गए। तो पहला सवाल था मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? तो आप ने उसका जवाब दिया कि इस्लाम जो है वो कलमा यानी शहादत देना और नमाज पढ़ना और जकात देना और रोजा रखना और हज करना। फिर फरमाया मल ईमान, ईमान क्या है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसके ऊपर अलग जवाब दिया कि अल्लाह पर ईमान लाना और उसके रसूलों पर, उसकी किताबों के ऊपर वगैरह। फिर उसके बाद फरमाया मल एहसान, ठीक है, एहसान किया है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर ये अल्लाह का अन्ना का तराहू, कि तू अल्लाह की इबादत ऐसे करे कि गोया कि तू उसको देखता है। वह इल्लम तराहू, और अगर तू उसको नहीं देखता है, का अन्ना का यराक, तो वह इल्लम तकुन तराहू फइन्नहु यराक, तो बेशक वो तो तुझे देखता ही है। किस तरीके से अल्लाह ताला की इबादत कर। तो एहसान का मतलब फिर क्या हुआ कि बंदा अपनी बंदगी में वो कैफियत हासिल कर ले कि वो हर वक्त अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज्जत के निगाहों के सामने पाए, और इतना भी अगर वो कर पाए, इतना भी अगर कैफियत हासिल कर ले कि वो गोया कि अल्लाह को देख रहा है, ठीक है, गोया कि अल्लाह को देख रहा है, तो ये तो सबसे ऊंची कैफियत हो गई। लेकिन अगर अल्लाह ताला को देखने वाली कैफियत नहीं भी उसको मयसर आ रही, तो कम अज कम इस कैफियत में तो वो आ ही जाए कि हर वक्त अल्लाह को अपने आप को देखता हुआ महसूस करे। तो एहसान की कैफियत कैसे हासिल होती है, या सुलूक के रास्ते के ऊपर कैसे चलते हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है वो फिर इस किताब के अंदर हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाई। और ये कोई बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स किस्म की और रॉकेट साइंस किस्म की, कि गोया कि आप जो है वो स्पेस शटल या स्पेस में जाने वाला रॉकेट बना रहे हैं, तो उसके लिए कितनी ज्यादा फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस वगैरह की जरूरत पड़ेगी, कैसी कैसी मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि इंतहाई मुश्किल होगा। तो वाले साहब को तो सही है। स्पिकेटेड और कॉम्प्लेक्स किस्म की बातें नहीं है, बल्कि सादा सादा क्या है कि अपने आप को बुरे अखलाक से पाक कर लेना, बुरे अखलाक से, बुरे बुरे मैनर्स से, बुरे जो है वो आदत से अपने आप को पाक कर लेना, ठीक है, और अच्छे आदत जो है वो अपने अंदर पैदा कर लेना, ठीक है। तो इस वजह से हमने ये दो जो इसके ज़ेरी उनवानात थे वो सबसे पहले पढ़ लिए थे कि अखलाक जमीमा और उनका इलाज, ठीक है, उसके ऊपर काफी तफसील के साथ बात हमने कर ली, मुकम्मल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर अखलाक हमीदा और उनको पैदा करने के तरीके, ठीक है, वो भी हमने मुकम्मल कर लिया था पिछली क्लास के अंदर पढ़ के। अब जो है वो इसी किताब का जो तीसरा और आखिरी हिस्सा है वो है शेख कामिल के साथ ताल्लुक, ठीक है, शेख कामिल के साथ ताल्लुक। तो ये किताब सुलूक वल एहसान का हिस्सा ही है, ठीक है। तो अल्लाह जज़ाए खैर दे आप में से एक मुअल्लिमा और हमारी यानी जो जो सिलसिले में शामिल है, तो इस आज के जहन में नहीं था कि शेख कामिल के साथ ताल्लुक वाला मौजू भी जो है वो पढ़ा जाएगा, लेकिन उन्होंने तवज्जो दिलाई। तो फिर जब इसको दोबारा से पढ़ा तो फिर दिल में ये बात आई कि मुनासिब है कि इसको भी मुकम्मल पढ़ लिया जाए, ठीक है। तो शेख कामिल के साथ ताल्लुक को हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब का हिस्सा बनाया, किताब सुलूक वल एहसान का, ठीक है। तो अब जो है वो हम आगे पढ़ने से पहले थोड़ी सी आपसे भी एक 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 इनपुट लेते हैं कि आप कितना बात को समझती हैं या समझी हैं अब तक, कि हजरत ने किताब सुलूक वल एहसान के अंदर शेख कामिल के साथ ताल्लुक को क्यों रखा है, ठीक है, क्यों रखा है, जबकि अखलाक जमीमा उनका इलाज भी हजरत ने बता दिया, और अखलाक हमीदा और उनके हुसूल के तरीके ये भी तफसील के साथ जब बता दिए, तो उसके बाद फिर शेख काबिल के साथ ताल्लुक को भी इसका हिस्सा बनाने की जरूरत क्या पेश आई, क्यों जरूरत पेश आई, ठीक है। तो वो जवाब अगर आप देने की कोशिश कर लें, फिर उसके बाद हम पढ़ना शुरू करते हैं। जी चैट विंडो के ऊपर लिख करके जवाब दिया जाता है इस क्लास के अंदर। माइक को अपने म्यूट रखें प्लीज। जी तो शेख कामिल के साथ ताल्लुक का क्या ताल्लुक है इस किताब सुलूक वल एहसान के साथ? सारे तरीके तो बता दिए उन्होंने, ठीक है, सारी बुराइयां भी बता दी और सारी जो है वो अच्छाइयां भी बता दी, तो इससे जो है वो सुलूक का रास्ता तय हो जाता है। तो फिर क्यों शेख कामिल के साथ ताल्लुक क्यों? तो एक जवाब तो चले आया, क्योंकि हम किसी रहबर के बगैर रास्ता तय नहीं कर सकते। रहबर के बगैर रास्ता तय नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं कि हम रास्ते की जो है ना वो डिटेल्स किताब के अंदर पढ़ लें, जैसे कि वो मैप्स छापे हुए होते हैं ना, आपने शायद देखे नहीं होंगे कि जो बड़े बड़े मैप्स पूरे पूरे मुल्क के मैप्स छापे हुए होते हैं, उसके अंदर जो है ना वो सारी की सारी रोड्स के बारे में भी पता कि लिखा हुआ होता है पूरा, यानी बड़ी बड़ी तफसीलात उसमें लिखी होती हैं। तो उनको आप सामने रखें और रास्ता तय कर लें, ठीक है? तो रास्ता तय किया जा सकता है रहबर के बगैर भी, यानी किसी गाइड की जरूरत तो नहीं होती। गाइडेड मैप, तो मैप तो है ना किताब के अंदर लिखा हुआ, ये जो सब कुछ जो किताब में लिखा हुआ है तो इसको मैप ही समझें, ठीक है? तो फिर क्यों? क्योंकि शेख के ताल्लुक के बगैर ये इखलाक नहीं अपनाए जा सकते। तो आप समझती है ना कि नहीं अपनाए जा सकते? अच्छा, क्योंकि आदतुल्ला यही है कि सुलूक का रास्ता रिजालुल्ला की अमली रहनुमाई के बगैर तय नहीं होता। आदतुल्ला यही है। अच्छा, आप आदत ऊपर से पूछ के आइए कि आपकी आदत क्या है या अल्लाह, कि आदतुल्ला यही है कि सुलूक का रास्ता रिजालुल्ला की अमली रहनुमाई के बगैर तय नहीं होता। अच्छा, और इन बातों पर अमल के लिए मुस्तकिल रहनुमाई की जरूरत है, और ये रहनुमाई सही तरह हासिल करने के लिए शेखे कामिल की जरूरत है। अच्छा, मिरर की जरूरत होती है। चलिए, ये तो मेकअप शेकअप कोई बीच में लेकर के आ रहे हैं, जैसे मेकअप के लिए मिरर की जरूरत होती है, उसी तरह से इनके लिए भी मिरर की जरूरत होती है। अच्छा जी, सबके ज़ाती मामलात अलग अलग होते हैं, इन मसाइल के हल के लिए हमें शेख की जरूरत होती है, ठीक है? जवाब तो खैर सबके एक से बढ़कर एक हैं, और गलत तो कोई भी जवाब नहीं है इनके अंदर से, माशाल्लाह सही तो जवाब सारे के सारे हैं। विदाउट अ शेख देयर इज ओनली शैतान गाइडिंग अस, सो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज हिज इंटरफेरेंस वी नीड ए शेख। ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छा जवाब है। हर एक के अपने अपने हालात होते हैं, चुनाचे मेरे लिए मेरे हालात के मुताबिक क्या सही है ये शेख के ताल्लुक से पता चलेगा। शेख बताते हैं कि जिससे हम फायदेमंद समझ रहे हैं वाकई ऐसा ही है या नहीं है। शैतान और नफ्स रुकावट डालते हैं उनके चल ठीक है, जज़ाकुल्लाह, बहुत सारे जवाब आ गए और अच्छे अच्छे ही जवाब हैं, और सही भी इनके अंदर जवाब मौजूद हैं। अच्छे जवाब तो माशाल्लाह सारे ही हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे सही जवाब भी डेफिनेटली है। शेख की डांट जरूरी होती है। चले जी, माशाल्लाह, शायद इस वजह से कि ये राज उमूमी तौर पर बताए गए हैं, मगर हर एक के हालात मुख्तलिफ होते हैं। हाँ, उमूमी और खसूसी का फर्क होता है। तो किताब के अंदर जो बातें होती हैं वो उमूमी बातें होती हैं, और जो जो एक जिंदा शख्सियत होती है वो खसूसी बात फिर इंसान को बताती है कि कैसे उसके ऊपर अप्लाई होती है। शेख कामिल के बगैर नेकी पर जमना मुश्किल है, बंदे का शैतान के हरबे में आने का इम्कान बहुत ज्यादा होता है। जी, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सादा सा आसान सा जवाब यही है कि इस दुनिया को अल्लाह ताला ने जो है ना वो असबाब की दुनिया बनाया है, तो हमें कोई काम करने के लिए हमें असबाब की जरूरत पड़ती है, ठीक है? असबाब की, मींस की जरूरत पड़ती है। तो इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने हमें जो भेजा है वो अपनी बंदगी के लिए भेजा है, लेकिन हमें भेजने से पहले ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक सबब बना दिया। हमें इस दुनिया में भेजने से पहले ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक सबब बना दिया। जो सबब किस चीज का था? वो सबब था गुमराही का सबब, ठीक है? हमारी बर्बादी का सबब, हमारी गुमराही का सबब, ठीक है, वो क्या सबब था? उस सबब का नाम था अजाजील, जो के बाद में बन गया यानी उसके बाद में बन गया इबलीस। ठीक है, तो इबलीस जो है ना, वो आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के फौरन बाद खड़ा कर दिया गया, कि जिसने जो है वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उससे पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने जवाब दिया कि भाई खलकतहू मिन तीन व खलकतनी मिन नार, मुझे तो आपने आग से पैदा किया और उसको आपने मिट्टी से पैदा किया, तो मैं उसको कैसे सजदा कर लेता। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके ऊपर नाराज हुए और उसको वहां से निकल जाने का हुक्म दे दिया। तो उसके ऊपर उसने जो है वो कस्में खाई कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं आदम को और उसकी औलाद को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, इनको यानी कामयाब नहीं होने दूंगा, मैं इनको नाकाम कर करके छोड़ूंगा। ठीक है, तो उसने कस्में खा ली और जो है वो उस काम के अंदर फिर उस दिन से लग गया। तो ये था गुमराही का सबब, ठीक है, जो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम के सिर्फ यानी गुमराह करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत को किसी सबब की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इंसान जो है वो अल्लाह ताला डायरेक्टली भी उसको गुमराह कर सकते हैं, चाहे तो उसके दिल के अंदर ऐसी बात डाल दें कि बस वो गुमराह हो जाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गुमराही के लिए एक सबब बनाया, एक मीन्स बनाया, जिसका नाम जो है वो शैतान रखा। ठीक है ना, वो शैतान अकेले भी मिलके अकेले भी काम नहीं कर रहा होता, बल्कि शैतान की पूरी जुर्रियत होती है, जो कि बनी आदम को सीधे रास्ते से गुमराह करने के लिए मेहनत करती रहती है। ठीक है, तो ये गुमराही का सबब था। अब गुमराही के सबब के साथ साथ दूसरी तरफ जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिदायत के भी असबाब बनाए। ठीक है ना, ये नहीं किया कि बस जो है ना वो इधर से जो है वो गुमराही की तरफ बुलाने वाला ही होगा और मेरे बंदे जो है बस उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करते रहें और लड़ते रहें उससे और हिदायत के रास्ते के ऊपर कायम रहे, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने दूसरी तरफ हिदायत का सबब क्या बनाया, ये जब शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बेगम अम्मा हव्वा को जो है वो गलत फहमी में मुब्तला करके जन्नत का जो वो फल था वो खाने के ऊपर माइल कर दिया, तो उन दोनों को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो जन्नत से दुनिया के अंदर भेज दिया। लेकिन दुनिया में भेजने के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेहरबानी फरमाई, ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर मेहरबानी फरमाई कि फरमाए कि मेरी तरफ से तुम्हें हिदायत आती रहेगी, मेरी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत आती रहेगी, बस उस हिदायत को जो भी उसकी इत्तबा करेगा तो वो कामयाब हो जाएगा और जो उस हिदायत की इत्तबा नहीं करेगा वो नाकाम हो जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में भेजने के साथ साथ जो है वो हिदायत के असबाब भी बना दिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आदम अलैहिस्सलाम को खुद ही हिदायत का सबब बना दिया, उनको अपना नबी बना दिया। ठीक है, तो आदम अलैहिस्सलाम जो है वो सबसे पहले हिदायत के सबब जो है वो खुद ही बन गए, फिर आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से भी अल्लाह ताला जो है वो नबी बनाते रहे। आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो है वो शीश अलैहिस्सलाम का नाम मशहूर है कि वो अल्लाह के नबी हुए। फिर उस जमाने के और भी बहुत सारे नबी होंगे, लेकिन एक इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम जो है वो भी बड़ा मशहूर हुआ। ठीक है, फिर नूह अलैहिस्सलाम का नाम तो और भी ज्यादा मशहूर हुआ। ये सब कौन थे? ये हिदायत के असबाब थे, असबाब हिदायत। ठीक है, तो एक सबब जो है वो जाता था तो दूसरा सबब जो है वो उसकी जगह ले लेता था। जो गुमराही का सबब शैतान, वो भी मुस्तकिल अपना काम करता रहा और हिदायत के असबाब जो है वो भी मुस्तकिल अपना काम करते रहे। ठीक है, तो इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला असबाब इख्तियार करते हैं। तो ये जो शेख कामिल जो चीज है ना, ये भी एक इंसान है और ये भी हिदायत का सबब है, ये भी हिदायत का सबब है। ठीक है ना, असल में हिदायत किसने देनी है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने देनी है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि इंसान जो इस दुनिया के अंदर आता है तो वो उसको कौन भेजता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत भेजते हैं ना, ठीक है ना, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो उसको ऊपर से फेंक नहीं देते। ठीक है, कि जाओ तुम नीचे जा करके जो है वो कहीं पे जा करके लैंड कर जाओ, ऐसे नहीं होता, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो उसके लिए पहले तो दुनिया के अंदर उसके वालिदैन को भेजते हैं। ठीक है ना, यानी वालिदैन होते हैं, वालिद साहब भी होते हैं, वालिदा साहिबा भी होती हैं। ठीक है, फिर वालिद साहब वालिदा साहिबा जो है जब उनका मिलाप होता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके बाद एक फरिश्ते को उसकी रूह के साथ भेजते हैं। वो फरिश्ता जो है ना, वो आकर के माँ के रहम के अंदर उसकी रूह को जो है वो डालता है। ठीक है, तो ये सब भी असबाब हैं। ये वालिद साहब जो है वो दुनिया में लाने का सबब बनते हैं, वालिदा साहिबा दुनिया में उस इंसान के लाने का सबब बनती हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं लेकर के आ रही होती। वालिद साहब अपनी मर्जी नहीं चला सकते इसके अंदर, मर्जी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही की चलती है, और ये रूह जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही की तरफ से आती है। ठीक है, उसी तरीके से बारिश बरसाने के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज्जत बादल का सबब इस्तेमाल करते हैं। इल्म पढ़ाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत उस्ताद का, उस्तानी का सबब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो शेख कामिल भी जो है वो एक सबब ही है, वरना हिदायत जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही देते हैं, शेख कामिल हिदायत नहीं देता है। ठीक है, तो अब जो पीछे हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने किताब सुलूक वल एहसान के अंदर अखलाक जमीमा बता तो दिए सारे के सारे, तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने गोया कि उस्ताद का काम कर दिया। ठीक है, उस्ताद जो है ना वो इल्म देता है कि भाई ये बात गलत है, ये बात सही है, इसी को इल्म कहते हैं। ये बात नुकसानदेह है और ये बात फायदेमंद है, इसी को इल्म कहते हैं। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने किताब के अंदर ये सारा का सारा इल्म लिख दिया। लेकिन इस इल्म के ऊपर चलना, इस इल्म के ऊपर अमल करना, ठीक है, तो वो एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग बाब है। उसके लिए जो है ना वो फकत किताबी इल्म काफी नहीं होता, तो उसके लिए जो है वो कोई हाथ पकड़ करके चलाने वाला, ठीक है, और गलतियों की इसलाह करने वाला, जिसको के इन्होंने मिरर भी लिखा था, आईना, तो वो भी चाहिए होता है अल्लाह ताला के इस असबाब के निजाम के अंदर। तो अल्लाह ताला ने फिर क्योंकि निजाम बनाया, तो इस वजह से हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने इस मेहनत के लिए जो सबब, सबसे बड़ा सबब मौजूद है, वो शेख कामिल का सबब है। यही अंबिया अलैहिस्सलाम का भी काम था कि वो अपने जो मानने वाले उम्मती होते थे, वो उनके लिए शेख कामिल का रोल प्ले कर रहे होते थे। ठीक है, जब अंबिया का सिलसिला इस दुनिया से खत्म हो गया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस काम को खत्म नहीं कर दिया कि अब जो है ना, क्योंकि अब नबियों को मैंने भेजना बंद कर दिया है, अब इंसानों को जो है वो शेख की जरूरत भी खत्म हो गई। नहीं, अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं कि, हालांकि अल्लाह कर सकते थे, अगर चाहते तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन ना तो शेख की जरूरत खत्म हो गई, यानी ना तो हिदायत के सबब की जरूरत खत्म हो गई, और ना ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है ना वो गुमराही के सबब को खत्म कर दिया। ठीक है ना, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसा करते कि भाई नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा, ठीक है ना, तो चलो भाई हिदायत के असबाब को मैंने बंद कर दिया, अब जो है वो दूसरी तरफ गुमराही के सबब को भी बंद कर दो, तो जितने शयातीन थे उन सब के सबको जो है वो मौत दे देते, उन सबको मौत दे देते, या उन सबको हिदायत दे देते, है ना। अब शैतान जो है ना वो सारे के सारे तौबा करके नेक बन गए, अब वो किसी दूसरे को गुमराह नहीं करेंगे, या आप सारे के सारे शयातीन मर गए हैं, क्योंकि दूसरी तरफ से जो है ना वो नबी भी दुनिया से खत्म हो गए, तो शयातीन भी दुनिया से खत्म हो जाए भाई। ठीक है, तो ये बात मेरे ख्याल में मुसलमान तो मुसलमान, काफिर भी अच्छी तरीके से जानता है कि शयातीन दुनिया से खत्म नहीं हो गए। तो जब शयातीन दुनिया से खत्म नहीं हो गए, तो जो काम था नबियों का, वो काम तो अभी भी जारी है। जैसे तबलीगी जमात वाले भाई कहते हैं, नबियों का काम जारी है, अगर से के नबी खत्म हो गए, तो नबियों का काम किया है, चलत फिरत फिरत करना, इधर से उधर जाना खाली, ठीक है ना, और लोगों के दरवाजों में खटखटा करके उनको मस्जिद में लेकर के तालीम में ला करके बैठा देना, सिर्फ ये काम था नबियों का, राइट। तो नबियों का काम जो है वो और नहीं था इससे ज्यादा, यतलु अलैहिम आयाती ही, ये तबलीग जमाती वाला काम कर लेती है, यतलु अलैहिम आयाती ही, वो युजक्कीहिम, तबलीग जमात वो युजक्कीहिम वाला काम भी कर लेती है, वो युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और किताब और हिकमत का जो इल्म है वो भी तबलीग जमात कर लेती है। नहीं, तबलीग जमात तो ये सारे काम नहीं कर रही होती है। ठीक है, तो फिर कौन करेगा ये सारे काम? मदारिस के उलमा ने जो है वो युअल्लिमुहुमुल किताब का बेड़ा उठाया, वो युअल्लिमुहुमुल किताब, ये मदारिस के उलमाए कराम वहां पे बैठ करके करते हैं। ठीक है, और जो कुर्रा हजरात होते हैं, जिन्होंने तिलावत कुरान के ऊपर मेहनत करी हुई होती है, वो यतलु अलैहिम आयाती ही का एक पोर्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, और तबलीगी जमात या तबलीग के जो मेहनत करने वाले दूसरे लोग होते हैं, ठीक ठीक है, जो कि दावत तो इरशाद का काम कर रहे होते हैं, बयानात करना, खुतबात करना, यतलू अलैहिम आयाती ही का एक मेजर हिस्सा जो है वो लोग कर रहे होते हैं कि वो लोगों को अल्लाह ताला की आयात पढ़ पढ़ करके सुना रहे होते हैं। ठीक है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान मजीद के अंदर जो है ना वो हमें ये बात याद दिला रहे हैं, हमें ये वादा कर रहे हैं, हमें इस चीज से डरा रहे हैं। ये खुतबे के अंदर जो जो खतीब हजरात होते हैं वो ये वाला काम कर रहे होते हैं, यतलू अलैहिम आयाती ही। ठीक है, जैसे हमारे हजरत का भी पिछले दिनों इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर के अंदर बयान रखा गया भाई फलस्तीन के मौजू के ऊपर। ठीक है, तो फलस्तीन के मौजू के ऊपर हजरत ने जो बयान किया तो वो खाली हालात हाजरा के वाकयात नहीं सुना रहे थे उसके अंदर, बल्कि उसके अंदर कुरान मजीद की आयात से बता रहे थे कि कैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो ईमान वालों को आजमाइशों में डालते हैं, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद जो है ना, ठीक है ना, वो कैसे नसर हुआ, मता नसरुल्लाह अला इन्ना नसरुल्लाह करीब, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो नुसरत है वो करीब है, कुरान मजीद की आयात सुना रहे थे अपने बयान के अंदर। ठीक है, तो यतलु अलैहिम आयात ही का भी काम जो है वो उलमा हजरात ने अपने जिम्मे लिया, वही अल्लमुहुमुल किताब का भी बयान का भी काम जो है वो उलमा हजरात ने अपने जिम्मे लिया अल्लाह ताला की तौफीक से, और उसी तरीके से वही युज़क्कीहिम वही अल्लमुहुमुल हिकमा, हिकमत का जो सिखाने का काम था वो भी फिर अल्लाह का दीन का इल्म रखने वालों ने अपने जिम्मे लिया। तो नबियों का सिलसिला खत्म हो गया लेकिन उलमा और मशायख का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, क्योंकि नबियों का काम खत्म नहीं हुआ। ठीक है, तो शेख कामिल का जो है वो ये नबियों वाला ही काम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, वो युज़क्कीहिम नबी अलैहिस्सलाम का काम है जो कि फिर शेख कामिल आगे कर रहा होता है। तो ये सबब है शैतान से हिफाजत के लिए, ये वाला सबब इख्तियार किया जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सबब रखा है ठीक है दुनिया के अंदर, और हिदायत के रास्ते पर चलने में आसानी के लिए अल्लाह ताला ने इस सबब को रखा है। बाकी आप सबके जवाब भी बिल्कुल सही ही हैं जो आप सुन लेती है। तो अब हम जो है वो पीरी मुरीदी का बयान यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, पीरी मुरीदी। ठीक है, तो ये जो इस्लाही ताल्लुक होता है इसके लिए बरेसगीर पाक व हिंद के अंदर जो एक टर्मिनोलॉजी बड़ी इस्तेमाल की जाती है उसको पीरी मुरीदी कहते हैं। ठीक है ना, और पीरी मुरीदी जो है वो पढ़े लिखे शहरी तबके के अंदर एक इंतहाई बुरी चीज के तौर पर यह लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, पीरी मुरीदी, गोया कि उन्होंने दुकान बनाई हुई है, पीरी मुरीदी की दुकान बनाई हुई है। ठीक है, और जो है वो इससे जो है ना वो बहुत ही बुरे बुरे गलत गलत काम ये ले जा रहे हैं, काम लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक इस्तेमाल हो गया है इस लफ्ज का बहुत सारे लोगों के नजदीक, लेकिन हकीकत जो है वो इस लफ्ज की बुरी नहीं है। ये ऐसे ही है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर सियासत का जो लफ्ज है ये एक बहुत ही बुरे मानी में इस्तेमाल होता है, सियासत का लफ्ज है ना, ये सियासतदान जो है ये तो सबसे बुरे लोग होते हैं, और कोई शख्स अगर कोई उल्टी सीधी हरकत कर रहा होता है ना किसी इज्तिमाई काम के अंदर, कोई उल्टी सीधी हरकत कर रहा होता है तो कहते हैं ये सियासत कर रहा है, यानी बुरा काम कर रहा है। लेकिन सियासत का जो लफ्ज असलन तो बुरा नहीं है ना, हदीस मुबारका के अंदर सियासत का लफ्ज जो है वो अंबियाए कराम के लिए इस्तेमाल हुआ है कि अंबियाए कराम बनी इसराइल के जो थे वो सियासत किया करते थे। ठीक है, तो अब लोग उसको बुरा इस्तेमाल करना शुरू हो जाए तो उससे उसकी हकीकत बुरी हो नहीं जाती। उसी तरीके से पीरी मुरीदी का भी जो लफ्ज है ये लोगों के इस्तेमाल की वजह से जो है वो बुरा नहीं बन जाता। ठीक है, तो हजरत ने पीरी मुरीदी का लफ्ज इस्तेमाल किया, वैसे भी हजरत ने जब ये किताब लिखी थी तो आज से कोई एटलीस्ट 100 साल पहले की बात है। ठीक है, उसको तो पाकिस्तान बना भी नहीं था, अब तो 76 सालों में बने हुए हैं, उससे पहले तो नहीं था ना पाकिस्तान कि वहां पे सियासत व्यासत होती हो। तो खैर, पीरी मुरीदी, पीर से पीरी और मुरीद से मुरीदी। पीर का मतलब क्या होता है, पीर का जो लफ्ज है ये फारसी जुबान का लफ्ज है। ठीक है, और ये इस्तेमाल होता है एक पीरहाना साल शख्स के लिए, पीरहाना साली यानी बुढ़ापा, जो बूढ़ा शख्स होता है ना, बुजुर्ग होता है, बूढ़ा होता है, उसको फारसी जुबान के अंदर पीर कहा जाता है। उर्दू जुबान के अंदर बूढ़े शख्स को हम पीर नहीं कहते, ठीक है, लेकिन फारसी जो कि उर्दू की बुनियादों में से एक बुनियाद है उसके अंदर उस बूढ़े शख्स को पीर कहा जाता है। ठीक है, तो उर्दू में जो है वो पिराना साली का लफ्ज जरूर इस्तेमाल होता है बुढ़ापे के लिए, लेकिन पीर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता बूढ़े के लिए। ठीक है, मुरीद का लफ्ज कहाँ से आया? मुरीद का जो लफ्ज है ये अरबी जुबान से आया, उर्दू जुबान जो है वो अरबी, फारसी और तुर्क और हिंदी, संस्कृत, बहुत सारी जो जुबानों का मजमू है, सबसे ज्यादा जो है वो अरबी उर्दू के अंदर है। तो मुरीद का लफ्ज अरबी से आया, अरादा युरीदु इरादतन फहुआ मुरीदुन, इरादा करने वाला जो होता है ना, किसी किसी का इरादा करने वाला, किसी को किसी 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 की तरफ लपकने वाला, किसी की तरफ जो है वो बढ़ने वाला, उसको मुरीद कहा जाता है। ठीक है, जिसने के इरादा किया हो, अरादा युरीदु इरादतन, ठीक है, तो इरादा करने वाला मुरीद, तो उससे जो है वो मुरीदी का लफ्ज आ गया। तो पीरी मुरीदी का मतलब कि एक तरफ जो है वो पीर साहब हो, दूसरी तरफ जो है वो मुरीद साहब हो, तो इन दोनों का जो मजमुआ बनता है उसको पीरी मुरीदी कह देते हैं। ठीक है, आजकल जो मार्केट के अंदर ज्यादा एक्सेप्टेबल लफ्ज है उसके लिए वो है इस्लाही ताल्लुक, इस्लाही ताल्लुक। ठीक है, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाही ताल्लुक के साथ जो है ना वो कोई मनफी माने चिपके नहीं है। ठीक है, कल को हो सकता है इसके साथ भी चिपका दें कोई मनफी मानी, कोई नेगेटिव कॉनोटेशन। ठीक है, जिस तरह पीरी मुरीदी के साथ चिपक गया, जिस तरह जो है वो सियासत के साथ चिपका दिया गया, उसी तरह इस्लाही ताल्लुक को भी जो है वो कोई गंदी चीज बना करके शैतान पेश कर देगा, कल को फिर हम उसको भी छोड़ देंगे। ठीक है, नहीं ऐसा इतनी जरूरत नहीं होती हर टर्म को अबैंडन कर देने की। तो पीरी मुरीदी के बयान में हजरत थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि किसी अल्लाह वाले बुजुर्ग से इस्लाही ताल्लुक रखने के कई फायदे हैं। तो पहले जो है वो चीज के फायदे बयान कर रहे हैं, जब फायदे इंसान को पता चल जाते हैं किसी चीज के, तो इंसानी तबीयत अल्लाह ताला ने ऐसे बनाई है कि वो उसकी तरफ खुद ही रगबत करना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब फायदों का इल्म हासिल होता है तब रगबत बढ़ती है। तो सबसे पहले इल्म की जरूरत होती है, ठीक है, बेनिफिट्स का इल्म, तब उसके बाद रगबत पैदा होती है, फिर रगबत जो है वो तलब में तब्दील होती है, तलब जो है वो मोहब्बत में तब्दील होती है। ठीक है, तो ये सारी अलग अलग तफसील है, तो वो अभी हम दोबारा नहीं जाएंगे उसके अंदर। तो फायदे क्या है? फायदे तो एक फायदा ये है कि इस्लाह बातिन के जो तरीके मजकूर हुए उन पर अमल करने में कभी कम फहमी से गलती हो जाती है, शेख कामिल उसका सही रास्ता बता देता है। ठीक है, कम फहमी यानी हम बात को समझ नहीं पा रहे होते, फहम जो है ना ये इसका मतलब क्या है कि बात आपको पता तो चल गई है लेकिन उस बात के मानी क्या है, मकसद क्या है, ठीक है, और क्या मकसद उसका नहीं है, इसमें इंसान जो है ना वो गलती कर जाता है क्योंकि उसकी कम फहमी होती है, उसको कम फहमी कहते हैं, गलत समझ लेना किसी बात को। अब कम फहमी का ताल्लुक भी कम इल्मी के साथ होता है। ठीक है, क्योंकि एक शख्स जिसका इल्म जो है ना वो भी किसी टॉपिक के ऊपर नाकस होता है, ओवरऑल उसके पास जो है ना वो एक पिक्चर नहीं होती किसी टॉपिक की, तो बड़ी जो लिमिटेड पिक्चर होती है, लिमिटेड व्यू होता है, तो उसकी वजह से वो कुछ का कुछ समझ जाता है। ठीक है, तो कम इल्मी ही जो है वो कम फहमी का सबब भी बन जाती है। अब जाहिर है एक इंसान जो है वो एकदम से सारा इल्म तो किसी टॉपिक का हासिल नहीं कर सकता, ठीक है, कि कम फहमी से वो जो है वो बचना शुरू हो जाए, नहीं, इल्म हासिल करने में वक्त लगता है, तदरीजन ये प्रोसेस हासिल होता है ना किसी जगह का इल्म। ठीक है, तो जाहिर है जब तक आपके पास कामिल इल्म ना आ जाए तो उस वक्त तक कम फहमी का जो है वो खदशा रहता ही है। तो जो पीछे तरीके हमने किताब के अंदर पढ़ दिए हैं ना, ये भी कामिल इल्म नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जिसका कि इल्म किसी किताब के अंदर हमें ऐसे आसानी से एक जगह पे नहीं मिल जाता, इस वजह से कम फहमी हो जाती है और कम फहमी की वजह से गलती हो जाती है। तो शेख कामिल जो है वो चूंकि उसका इल्म जो है वो इस मौजू के ऊपर हमारे मुकाबले में बहुत ज्यादा होता है, हमारे मुकाबले में ज्यादा होता है, बल्कि काफी ज्यादा होता है, तो वो कम फहमी वाली गलती नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि जैसे कि कहते हैं ना राहबर जो है, तो वो राहबर कम से कम एक दफा हमसे पहले उस रास्ते को तय कर चुका होता है ना। ठीक है, तो वो यानी मंजिल तक पहुंच करके फिर मंजिल से वापस आया हुआ होता है, तभी वो गाइड का काम कर सकता है ना। मिसाल के तौर पर अब माशाल्लाह बहुत सारे लोग जो है वो हज पे जाने वाले हैं, ठीक है, तो हज के सफर के ऊपर जो है वो लोग अपने साथ जो है ना वो गाइड को लेकर के जाते हैं, ठीक है, कि भाई इस ग्रुप के अंदर फलाने मुफ्ती साहब गाइड होंगे, फलाने शेख साहब गाइड होंगे, फलाने जो है वो मौलाना साहब गाइड होंगे, या कुछ जगहों पर जो है वो दख्तूर साहब जो है वो गाइड होंगे। तो वो जो गाइड होते हैं वो क्या हमारी तरह के होते हैं कि वो भी पहली दफा जा रहे हैं? नहीं, कोई पहली दफा जो सफर पे जा रहा होता है उसको कोई भी जो है ना वो गाइड नहीं बनाता कि भाई आप भी तो पहली पहली आपका तजुर्बा है, तो कल क्या पेश आएगा, आगे जाके क्या करना होगा, अगर हमने ही यानी हम सब एक जैसे हैं तो फिर हम आपको गाइड क्यों बनाएं भाई, गाइड के एक्स्ट्रा पैसे क्यों दें भाई, ठीक है ना। तो गाइड तो सिर्फ उसी शख्स को रखा जाएगा ना जो कि कम से कम एक दफा पहले सफर कर चुका हो, या जो अच्छे गाइड होते हैं वो कई कई दफा जो है वो हज के सफर पहले कर चुके होते हैं, तो उनको रास्ते का पता होता है, ठीक है। तो यही जो है ना शेख कामिल का भी यही मामला है कि सुलूक का जो रास्ता है ना वो तय कर चुका होता है, ठीक है। दूसरा फायदा यह है कि किताब में पढ़ने से बसा औकात इतना असर नहीं होता जितना शेख के वाज़ो नसीहत और हिदायात से होता है, ठीक है। किताब में पढ़ने से असर नहीं होता क्योंकि किताब बेशक किसी बहुत बड़े अल्लाह के वली की लिखी हुई किताब हो, जैसे कि हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, राइट, तो वो कितने वली कबीर थे और कितने माशाल्लाह उनकी किताब के अंदर कितना असर होगा, उनके अल्फाज में कितना असर होगा, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है ना वो मामला ऐसा रखा है कि फकत किताब का जो असर होता है वो इंसान के लिए अक्सर औकात जो है वो काफी नहीं रहता, ठीक है। तो जाहिर है उसके अंदर जो है वो सबसे अहम उनसर तो यही होता है कि इंसान का अपना नफ्स और शैतान जो होता है वो उसको हिदायत के रास्ते से रोकने की मेहनत कर रहा होता है, और बड़ी एक्टिवली मेहनत कर रहा होता है, ठीक है, मुस्तकिल वसवसे डाल रहा होता है, जबकि इसके बरक्स जो किताब होती है वो किताब हमारे दिल के अंदर अच्छे ख्याल पैदा नहीं कर सकती, किताब को अल्लाह ताला ने ये वाली सलाहियत नहीं दी है, ठीक है, कि वो हमारे अंदर अच्छे ख्यालात पैदा कर सके। अच्छे ख्यालात पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ने दूसरे असबाब रखे, ठीक है, जिसको कि एक तो सबब है फरिश्ता और दूसरा सबब है शेख कामिल, ठीक है, तो वो अच्छे ख्यालात भी पैदा करते हैं और नफ्स और शैतान जो है वो बुरे ख्यालात पैदा कर रहे होते हैं हमारे अंदर। तो इस वजह से किताब का जो फकत किताब जो होते हैं ना उसका इतना असर नहीं होता जितना शेख के वाज़ो नसीहत और हिदायत। अब ये क्यों शेख के वाज़ो नसीहत हिदायत से असर हो जाता है, तो ये फिर मजीद हम आगे जा करके इसको और भी पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1,24,000 अम्बिया भेजे जो कि सारे के सारे जो है वो शेख कामिल का काम का रोल प्ले करते थे, का किरदार अदा करते थे, 1,24,000, लेकिन किताबें कितनी भेजी, किताबें जो है वो फकत 4 या 5, तो सहीफों वगैरह को मिल मिला करके जो है ना वो 5-6 किताबें बनेंगी, और जो मशहूर किताबें हैं कुरान मजीद तौरात इंजील बस और जबूर ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना, तो 4 किताबें, लेकिन इन 4 किताबों के साथ कितने सारे जो है वो अंबिया भेजे, ठीक है। तो फकत किताब अगर इंसान की हिदायत के लिए काफी होती तो अल्लाह ताला को नबी भेजने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत तो हकीम है और हकीम का जो कोई फेल होता है वो हिकमत से खाली नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने बगैर हिकमत के यानी बगैर रीजन के, बगैर कॉज के, बगैर वजह के जो है वो 1,20,000 अंबिया, 4 तो चलो जी किताबों के साथ आए थे ना, बाकी 1,20,000 वो किसके साथ आए थे, वो तो किसी किताब के साथ नहीं आए थे, ऐसी भेज दिए, ठीक है, तो उसकी जरूरत ही इंसान को, इस वजह से अल्लाह ताला ने अंबिया भेजे हैं, ठीक है। तो किताब वक्त फायदा तनहा जो है वो फायदेमंद इंसान के लिए नहीं हो पाती है। तीसरा फायदा ये है कि पीर से एतकाद और मोहब्बत हो जाती है और यूं जी चाहता है कि जो उसका तरीका है हम भी उसी के मुताबिक चले, ठीक है, तो ये अल्लाह ताला जो है ना वो एतकाद और मोहब्बत का ताल्लुक जो है वो पैदा कर देते हैं। मोहब्बत जो है वो इंसान के दिल के अंदर होती है और दिल एक ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना पर्सनल कंट्रोल रखा हुआ है, अपना जाती यानी उसका इख्तियार जो है वो इंसान को नहीं दिया अल्लाह ताला ने, हालांकि वो उसके अंदर ही होता है। लेकिन हमारे अंदर एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हमारा बिल्कुल भी इख्तियार नहीं है, ठीक है। तो वो जो है ना अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी तरफ से फिर उसके अंदर किसी के लिए मोहब्बत पैदा कर देते हैं, किसी के लिए नफरत पैदा कर देते हैं, कभी जो है वो जिसके लिए मोहब्बत थी उसी को जो है वो नफरत में तब्दील कर देते हैं, जिसके लिए नफरत थी उसी को जो है वो मोहब्बत में तब्दील कर देते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे दिल को अपने इख्तियार के अंदर रखा है, ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पीर से जो है ना वो एतकाद मोहब्बत जब पैदा कर देते हैं तो फिर क्या होता है कि फिर मुरीद के या सालिक के या सालिका के खुद जी चाहता है कि जी ये जो बात बता रहे हैं मैं उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारूं, इनकी बातों को अहमियत दूं और इनके ऊपर अमल करने की कोशिश करूं, ठीक है। यही जो है ना वो रीजन बनती है कि जिसकी वजह से शेख के वाज़ो नसीहत और हिदायत से असर हो जाता है जबकि किताब पढ़ के वैसा असर नहीं हो रहा होता है, ठीक है। चौथा फायदा यह है कि पीर अगर नसीहत करने में सख्ती या गुस्सा करता है तो नागवार नहीं होता, यानी बुरा नहीं लगता, फिर उस नसीहत पर अमल करने की ज्यादा कोशिश होती है, ठीक है। यानी जिनको के हकीकत में यानी अपनी इस्लाह की फिक्र हो जाती है और वह शेख को जो है वो अपना मुसले और अपना रहनुमा और अपना यानी एहसान करने वाला अपना मोहसिन समझ रहे होते हैं ना, तो वो फिर डांट डपट से उखड़ते भी नहीं, उनको नागवार नहीं होता है ये, ठीक है, बल्कि उल्टा डांट डपट से जो है ना उनको और ज्यादा फायदा हो जाता है। इसी वजह से हमारे मशायख के यहाँ ये मिसरा भी मशहूर है कि जितना शेख की डांट से मुरीद को फायदा होता है उतना जो है वो दूसरी किसी चीज से फायदा नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत से फवायद हैं जो उन लोगों को हासिल होते हैं जिन पर अल्लाह ताला का फजल होता है, यानी शेख तो एक सबब है, इससे जो फायदे जिसको हासिल होते हैं तो वो अल्लाह ताला की मर्जी से अल्लाह ताला के फजल से अल्लाह ताला की रहमत से ही हासिल होते हैं। तो असल सबब तो अल्लाह, असल जो 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 फायदा हासिल करने वाली जात है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। तो अब तक जो हमने पढ़ा है इसके बारे में कोई सवाल हो? हाँ सर, तो ये जो टॉपिक है ये कोई नया टॉपिक नहीं है हमारे दुरूस के अंदर, ये बहुत ज्यादा इसका तस्करा जो है वो पहले भी होता रहा है, लेकिन पहले मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट के अंदर मुख्तलिफ जमन के अंदर होता रहा है। जैसे कि कुरान मजीद की तफसीर पढ़ते हैं तो इसके अंदर जहाँ कहीं ऐसी कोई बात आती है जिसका शेख कामिल के साथ ताल्लुक बनता है तो वहां पर इसके बारे टॉपिक पर बात हो जाती है। हदीस मुबारक पढ़ रहे थे तो वहां पर जब कभी इस किस्म की बात आई तो शेख कामिल के बारे में बात कर ली, कभी किसी और मौजू में, ठीक है। लेकिन इस वक्त जो है वो हम जो जो मौजू पढ़ रहे हैं ये है मौजू है ही पूरा का पूरा शेख कामिल के साथ ताल्लुक के बारे में, तो इस वजह से कोशिश ये होगी कि जो बातें हम पहले करते रहे हैं तो उनको जो है ना वो इस क्लास के अंदर जो है वो जमा कर दिया जाए। अब जैसे जैसे अल्लाह ताला याद दिलाते रहेंगे तो वैसे वैसे वो बातें जो है वो इस क्लास के अंदर दोबारा से बयान करते चले जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो वही बात जो एक बड़ा अहम है मौजू यानी इस मौजू से बहुत अहम ताल्लुक रखती है वो ये कि जिसका कोई शेख नहीं होता, हमारे मशायख के दरमियान ये भी मिसरा बहुत ज्यादा मशहूर है कि जिसका कोई शेख नहीं होता उसका शेख शैतान होता है, ठीक है। क्योंकि शैतान जो है प्रभु गुमराही का रास्ता, वो गुमराही की तरफ जो है वो गाइड कर रहा होता है, तो शेख जो है वो गाइड करने वाले को भी कहा जा सकता है ना, यानी एक जनरल जो समझ है कि गाइड करने वाला, तो भाई गुमराही की तरफ गाइड करने वाला भी तो होता है ना, तो वो शैतान होता है। तो जब हिदायत की तरफ गाइड करने वाला कोई नहीं होगा, वो वाला खाना खाली होगा, तो फिर जाहिर है गुमराही की तरफ गाइड करने वाला तो है ही, वो तो अपना काम किए ही चला जा रहा है। इसी वजह से हो सकता है आपके से अक्सर ने ये वाकया भी इस हादसे से पहले सुना हुआ हो कि एक दफा हमारे हजरत का एक एतिकाफ प्रोग्राम हो रहा था साउथ अफ्रीका के मुल्क जैम्बिया के अंदर, तो वहां पर जो है ना एक साल बांग्लादेश से एक बुजुर्ग आए हुए थे जिनकी उस वक्त उम्र जो है वो 98 साल थी, 98 ईयर्स की उम्र थी उनकी। तो उनको हजरत ने फिर जो आखिर में इजाजत खिलाफत का की तकलीफ होती है तो उसके अंदर उनको बाकायदा अपनी अपनी तरफ से खिलाफत भी दी, यानी अपना नायब अपना नुमाइंदा भी उनको बनाया। तो जब उनका नाम बुलाया जा रहा था तो उससे पहले जो है वो बुलाने वाले जो शेख साहब थे जो कि इंडिया के मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ही थे, तो वो उनकी पूरी जो है ना वो लाइफ हिस्ट्री बता रहे थे कि भाई ये कौन है, यानी सबकी बताते हैं थोड़ी थोड़ी, तो इनकी भी बताई। कि भाई ये बुजुर्ग जो है वो बांग्लादेश से आए हुए हैं, इनकी 98 साल की उम्र है, और ये जब यानी जब छोटी उम्र थी ना इनकी, तो ये हजरत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के दुरूस में शामिल हो चुके हैं। यानी हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जब दारुलूम के अंदर बुखारी शरीफ वगैरह पढ़ाया करते थे, तो उस वक्त ये बुजुर्ग जो थे उनके दुरूस के अंदर बैठा करते थे। और फिर उसके बाद जो है वो ये बैत करने के लिए हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास तशरीफ ले गए। तो वो जो वक्त था ना हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का, आखिरी दौर था, बिल्कुल मरजुल मौत में थे। तो उन्होंने बैत तो कर लिया, नहीं, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त जो है ना उनको बैत नहीं किया, बल्कि उनको अपने एक खलीफा हजरत फूलपूरी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले कर दिया कि तुम इनसे बैत हो जाओ, क्योंकि मैं अब जो है ना वो इस काबिल नहीं हूं कि मैं तुम्हारी इसलाह और रोक टोक वगैरह कर सकूं। तो उनको अपने खलीफा साहब के हवाले कर दिया। हजरत फूलपूरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो है ना वो उनको अपने साथ जोड़ भी लिया और उनको अपनी तरफ से इजाज़त खिलाफत भी दे दी। फिर हजरत फूलपूरी रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हो गया, तो उन्होंने फिर हजरत मौलाना हकीम अख्तर रहमतुल्लाह अलैह, जो कि हजरत फूलपूरी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे, अगरचे कि इनको भी खिलाफत मिल चुकी थी हजरत फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह से, लेकिन उन्होंने फिर हजरत हकीम अख्तर रहमतुल्लाह अलैह से अपना इस्लाही ताल्लुक बना लिया, बैत का ताल्लुक बना लिया। और फिर हजरत हकीम अख्तर रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हो गया 2013 में गालबन उनका इंतकाल हुआ था, तो इन बुजुर्ग ने खुद बताया, और याजिस जो है वो उस जगह मौजूद था जब ये बता रहे थे, कि जब मेरे शेख मौलाना हकीम अख्तर रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया, तो फिर मैंने अपने आप से पूछा कि अब तुम अकेले रहोगे या किसी के साथ जुड़ जाओगे। ठीक है ना, उस वक्त इनकी उम्र जो थी वो कम अज कम यानी 97 ईयर्स तो हो चुकी है, या 96 97 ईयर्स तो हो चुकी थी। कहते हैं उस वक्त मैंने अपने आप से पूछा कि तुम अकेले रहोगे या किसी के साथ जुड़ करके रहोगे, तो मुझे ये जवाब मिला कि जिसका कोई शेख नहीं होता उसका शेख तो शैतान होता है। फिर मैंने इनसे ताल्लुक जोड़ दिया। फिर हजरत ने, वो जो बुजुर्ग थे, उन्होंने उंगली उठा करके ना हमारे हजरत के जो जो खेमा बना हुआ था मस्जिद के अंदर, क्योंकि एहतिकाफ के लिए होता है ना, जो बड़े आजाद होते हैं उनके लिए तो अलग से जो है वो एक जगह बना दी जाती है और जरा चादर वगैरह तान दी जाती है, तो उस तरफ इशारा करके अपनी उंगली से फरमाया फिर मैंने इनसे ताल्लुक जोड़ लिया। और फिर फरमाया कि ये जो हमारा शेख है ये कुतुबुल इरशाद है, ये कुतुबुल इरशाद है। ठीक है, तो जिनको अपनी इस्लाह की फिक्र होती है और जिनको शैतान से जो है ना वो डर लगा होता है कि ये जो है वो किसी वक्त भी मुझे गुमराही के रास्ते पर डाल सकता है, वो अगर 98 साल की उम्र के भी हो जाते हैं ना, उस वक्त भी जो है ना वो अपने आप को तन्हा नहीं रखता। उनका इस बात के ऊपर ऐसा यकीन है, इस बात के ऊपर कि जिसका कोई शेख नहीं होता उसका शेख तो शैतान होता है। तो शैतान की मुरीदी के अंदर तो फिर इंसान का ईमान सलामत नहीं रह सकता है। ठीक है, तो सहाबा के साथ भी यही मामला था कि सहाबा कराम जो थे उनके शेख नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ करते थे। हत्ता कि हमारे मशायख तो इसको और भी आगे लेकर के जाते हैं कि इवन नबी जो होते हैं ना, नबी भी बगैर तरबियत के नहीं होते, लेकिन नबियों की तरबियत जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत बराह रास्त कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से नबी का जो शेख होता है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात खुद होती है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वो उस्तादी का काम तो कर रहे होते हैं, शेख वाला काम नहीं कर रहे होते हैं, शेख वाला काम तो अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद कर रहे होते हैं। किसी ने यहाँ पे कोई मैसेज लिखा है कि अगर कोई किसी और से पहले बैत किया हो पर उनसे कांटेक्ट नहीं होता, बस वो कुछ मामलात बता दिए और कहे ये करते रहते, तो क्या ये सही है? क्योंकि जब तक राबता ना हो, हर मसला डिस्कस ना हो, तो क्या फायदा होगा? अभी बात तो ये, हर मसला डिस्कस जो है ना वो किया भी नहीं जा सकता, और शेख साहब जो है वो उनके पास इतना वक्त ही नहीं होता, और आपके पास भी इतना वक्त नहीं होता ना, जो है वो शेख के पास और भी कम वक्त होता है कि हर मसला जो है वो डिस्कस किया जाए, तो हर मसला डिस्कस करना जो है वो मकसूद नहीं होता। हाँ, अलबत्ता ये होता है कि शेख ने जो मामूलात बता दिए हैं, तो उसके बाद वक्तन फवक्तन कभी कभी जरूरत पेश आने के वक्त शेख के साथ जो है वो रब्ता करना जो है वो फायदा मंद होता है। ठीक है, तो इस वजह से अगर किसी ऐसे शेख के साथ आपका दोस्ताई ताल्लुक बना था कि जिनके साथ अब आपका बिल्कुल भी राबता नहीं है, तो उसका बेहतरीन तरीका तो ये होता है कि आप अपने शेख से जो है ना वो खतो किताबत के जरिए से या अपने शौहर के वास्ते से इजाजत ले लें कि हजरत मेरा अब आपसे जो है वो ताल्लुक नहीं हो पा रहा होता है और मुझे जो है वो रहनुमाई की जरूरत पड़ती है, तो आप मुझे किसी दूसरी ऐसी शख्सियत का बता दीजिए कि जिनके साथ जो है ना मैं जरा ज्यादा रबते में रह सकूं और वक्ता फवक्ता जरूरतन जो है वो मैं उनसे हिदायात लेती रहूं। ठीक है, तो अपने शेख से पूछ करके फिर किसी दूसरे के साथ जो है वो ताल्लुक बना लेना, ये सबसे बेहतरीन तरीका है। ठीक है, अगर ऐसा मुमकिन ना हो कि शेख से इजाजत भी ना ना ले सके, क्योंकि शेख जो है वो बिल्कुल ही खता खतो किताबत का जवाब नहीं दे पाते हैं या उन तक जो है वो आपकी रसाई है ही नहीं। ठीक है, तो अब क्या करे, अब इंसान जो है ना वो ये करे कि अपने यानी शेख के ही जो जो फिक्र रखने वाले और उन्हीं का जो है वो जो अकीदा रखने वाले किसी और शेख के साथ जो है ना वो ताल्लुक बना ले। ठीक है, और वो इस नियत से करे कि मैं शैतान से हिफाजत के लिए ये वाला काम कर रही हूँ। ठीक है, कि अपने किसी दूसरे शेख के साथ अपना ताल्लुक बना रही हूँ, लेकिन नियत यही रखे जहन के अंदर कि मुझे इनसे जो फायदा होगा ना वो मेरे शेख की दुआओं की वजह से ही होगा, मेरे शेख की दुआओं की वजह से, उनकी तवज्जोहात की वजह से ही मुझे जो है ना वो ये फायदा अल्लाह ताला ने अता फरमाया है कि किसी दूसरे सही उल अकीदा और सही मशरब वाले शेख के साथ मेरा इस्लाही ताल्लुक बन गया। ठीक है, तो एक ये दूसरा यानी दूसरा ऑप्शन ये है इंसान के पास। ठीक है, अलबत्ता एक बात यहाँ पर ये भी याद रखना चाहिए कि बैत का जो ताल्लुक है ना ये अक्सर आज के दौर के अंदर जो बना लिया जाता है ना तो ये इस लफ्ज की हकीकत से बिल्कुल नावाकफियत के साथ बनाया जाता है, किसी को पता नहीं होता उमूमी तौर पर। अब जाहिर है कुछ लोग हैं जिनको के बैत के लफ्ज का पता होता है, उसका मानी क्या है और उसका यानी इसके तकाजे क्या हैं, कुछ लोगों को तो पता होता है। ठीक है, लेकिन आम तौर पर जो है ना वो किसी को पता ही नहीं है कि बैत क्या चीज होती है और क्यों की जाती है, उसके क्या तकाजे होते हैं, उसके करने के बाद जो है वो कैसे इंसान को जो है वो इसको निभाना चाहिए, किसी को कुछ पता नहीं होता। बस जो है ना वो बैत का लफ्ज सुन लिया कहीं पे, कहाँ जी बैत कर लेनी चाहिए या बैत हो जानी चाहिए, और उस वजह से जो है वो किसी के साथ बैत कर लेते हैं यानी बैत के कलमात जो है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी जो बैत होती है ना इसका कोई हैसियत नहीं होती। अब वो खामखा उसको जो है ना वो पता नहीं क्या बना दिया जाता है कि नहीं बस हो गए तो हो गए, अब जो है ना मर जाओगे लेकिन बैत जो है वो तुम खत्म नहीं कर सकते, कुछ पता वता होता नहीं है। ठीक है, हकीकत के जाने बगैर जो है ना जो काम किया जा रहा होता है तो उसकी कोई रेलिवेंस कोई उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती। ठीक है, तो इस वजह से ना अगर इस किस्म की जो बैत करी हुई है ना तो इसकी फिक्र ना करें, बल्कि किसी ऐसी जगह पे जो है वो अगर कोई नजर आ जाता है कि हाँ भाई इनके साथ मेरा मेरी मुनासिबत हो सकती है और इनके साथ जो है मैं अपना इस्लाही ताल्लुक कायम कर सकती हूँ और फिर इनसे जो है वो गाइडेंस भी मिलती रहेगी, ठीक है, तो फिर वहां पे बैत करनी चाहिए, वहां पे इस्लाही ताल्लुक बना बैत कर लें या खाली इस्लाही ताल्लुक बना लें। ये टॉपिक इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में फर्क क्या होता है। ठीक है, तो बहरहाल यानी बैत जो है ना वो उसको कोई अपने ऊपर इस तरीके से सवार नहीं कर लेना चाहिए कि बस अब तो फंस गए तो फंस गए, अब तो हम कहीं और नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ ये बात है कि आपने बैत की हकीकत को समझ करके किसी के साथ जब बैत का ताल्लुक बनाया था अब उनसे ताल्लुक नहीं हो पा रहा है तो फिर जो आपको पहली सूरत बताई है ना उस सूरत के ऊपर अमल करना चाहिए कि अपने शेख से पूछ करके फिर किसी और के साथ सही ताल्लुक बना लें। ठीक है, या ये कि अगर शेख से ताल्लुक नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी तो फिर इस नियत के साथ कि मुझे जो फायदा किसी दूसरे शेख से मिलेगा वो भी अपने शेख की दुआओं की वजह से तवज्जोहात की वजह से ही मिलेगा। ठीक है, तो असल मकसूद जो है वो इस्लाह है, असल मकसूद बैत नहीं है। ठीक है, बहरहाल क्लास का टाइम पहली वाली का मुकम्मल हो गया है, बल्कि ज्यादा ही हो गया है, तो हम दूसरी क्लास में साली औरत की शुरू कर लेते हैं।